پرانے عہد نامہ میں سے اموس نبی کا صحیفہ، اس کا 8 باب، اس کی ہم 11ویں آیت سے پڑھیں گے 12ویں آیت تک۔ پرانے عہد نامہ میں سے، یوول نبی کے صحیفے کے بعد آپ کو اموس نبی کا صحیفہ ملے گا، اور ہم سیکھ رہے ہیں کہ پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، دناؤں کی طرح چلو نہ کہ نادانوں کی طرح۔ تو ہمیں دناؤں کی طرح زندگی بسر کرنی ہے، اسی لیے خدا کا کلام ہمیں فرماتا ہے کہ خدا کا کلام زندہ اور پاک ہے اور ہر دھو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو بند بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ سو اس لیے پرانے عہد نامہ میں سے 8 باب، اس کی 11 آیت، یہاں پر خدا کا بندہ اموس رویا دیکھتا ہے اور اس وقت کے بارے میں کلام کرتا ہے جو زمین پر واقعہ ہونے والا ہے، اور وہ بیان کرتا ہے کہ اس ایام میں کیا ہوگا۔ سو 11ویں آیت میں کہتا ہے، خداوند خدا فرماتا ہے، دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں قحط ڈالوں گا، نہ پانی کی پیاس اور نہ روٹی کا قحط، بلکہ خداوند کا کلام سننے کا، تب لوگ سمندر سے سمندر تک اور شمال سے مشرق تک بھٹکتے پھریں گے اور خداوند کے کلام کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں گے لیکن کہیں نہ پائیں گے، اور اس روز حسین کواریاں اور جوان مرد پیاس سے بیتاب ہو جائیں گے۔ 14ویں آیت بھی پڑھ سکتے ہیں ساتھ ہی، جو سامریا کے بتوں کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے دان تیرے معبود کی قسم اور بیتسبا کے طریقے کی قسم، وہ گر جائیں گے اور پھر ہرگز نہ اٹھیں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ تو یہاں پر خدا کا بندہ مستقبل میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کام ہوگا کہ ہر ایک جگہ پر پانی کا روٹی کا قحط نہ ہوگا۔ قحط سے مراد یعنی کہ اکال، کمی یا مسلسل طور پہ کسی چیز کا دستیاب نہ ہونا۔ تو آپ سب کو یاد ہوگا کہ ایلیا نے جب دعا کی تھی تو بارش نہ ہوئی، می نہ برسا، اور زمین اس علاقے میں کیا تھا؟ قحط تھا، اکال پڑا ہوا تھا۔ اور اس سے پہلے ہم جب پیچھے چلے جاتے ہیں الیشا نبی کے دور میں، تو اس دور میں بھی جب اکال پڑا تو کوئی بھی چیز دستیاب نہیں تھی، لوگوں نے اپنے بچے کھائے، عورتوں نے کیا کھائے؟ اپنے بچے کھائے، اور لکھا ہے کہ کبوتر کی جو بٹ ہے وہ 5 سے 3 مسکال میں ملتی تھی، یعنی کہ اتنا اکال پڑا ہوا تھا کہ کسی کے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ سو یہاں پر خدا کا بندہ کہتا ہے کہ روٹی اور پانی کا اکال نہیں ہوگا بلکہ خدا کے کلام کا سننے کا اکال۔ وہ دن بہت ہی بھیانک دن ہوں گے جب لوگ ڈھونڈیں گے کہ کوئی ان کو سچ بتائے، اور ڈھونڈنے سے ان کو کسی چیز کی سچائی کی رہنمائی نہ ملے گی۔ تو اس بات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ جب کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی، اس کے بعد زمین پر مصیبت کا دور شروع ہوگا، اور وہ 7 سال کا دور جسے دانیل نبی بھی بیان کرتا ہے کہ وہ قہر کے 21 ہفتے جو اس زمین پر گزریں گے، وہ 3.5 سال ایسے بھیانک ہوں گے جو بیان سے باہر ہیں۔ سو اس لیے آئیں ہم اس موجودہ دور میں دیکھیں کہ ہمیں کس طرح غور سے چلنا ہے، نادان نہیں بننا بلکہ دناؤں کی مانو زندگی بسر کرنی ہے۔ سو دوسرا کرنتھیوں اس کا 11 باب، اس کی ہم 13ویں آیت سے پڑھیں گے۔ نئے عہد نامہ میں سے دوسرا کرنتھیوں ग्यारह बाप उसकी, 13वीं आयत से हम 15वीं आयत तक पढ़ेंगे। कल एक नौजवान से मेरी गुफ्तगू हो रही थी, वो कहता है कि जी जिस हम दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं ये मुसीबत का दौर है। तो मैंने उसे कहा कि अगर ये मुसीबत का दौर है तो तुम्हारे कहने का या ईमान का अकीदा है कि कलीसिया उठा ली गई है? नहीं जी, ये 666 का दौर है। मैंने कहा नहीं जी। तो आज बहुत से ईमानदार नई नई बातों में गुमराह हैं। वो नई नई बातें किस किस्म की हैं कि जी मुसीबत का दौर है। और उस नौजवान ने कहा कि जी मैं उन्हें पादरी साहबान की बात कर रहा हूं जो बस्ती में आए हैं। वो कहते कि जब मैं दुआ करता हूं तो मेरी दुआ पर खुदा 12 तुम्मन फरिश्तों को भेजता है कि मेरे लिए लड़े। जब वो कहता है कि मैं दुआ करता हूं तो मेरे लिए मीका फरिश्ता आ जाता है, जब वो कहता है कि मैं दुआ करता हूं तो 60 पहलवान आकर मेरे लिए खड़े हो जाते हैं। मैंने उसे कहा जी 12 तुम्मन का तो चलो जिक्र है कि यीशु मसीह ने कहा था कि अगर मैं बाप से कहूं तो मेरे लिए वो आ जाएंगे, लेकिन पतरस से उसने कहा कि नहीं, जो तलवार उठाते हैं वो तलवार से कत्ल किए जाएंगे। वो उस रात की बात है जब खुदावंद यीशु मसीह गसमनी बाग में थे और रूमी हुकूमत के तमाम फौजीदार आए और यीशु मसीह ने कहा अगर मैं अपने बाप से दुआ करूं तो 12,000 तुम्मन जो हैं खुदा के फरिश्तों के आ सकते हैं, यानी आसमानी फौज जिसे लश्करों का खुदा कहा है वो आ सकता है। तो मैंने कहा जी आप कह रहे हैं कि जी आपको फरिश्तों की फौज की जरूरत है, आपको 60 पहलवानों का जिक्र कहां से आ गया? कहां पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जी आप दुआ करेंगे और 60 पहलवान आकर आपके लिए लड़ेंगे? तो मैंने उनको कहा कि आपको अपनी तालीम को दुरुस्त करने की जरूरत है। इसलिए जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं लोग कानों की खुजली के बायस नई नई बातें जो कि बाइबल मुकद्दस की भी नहीं है उसको सुनते हैं। आपको उन पादरी सबान का नाम नहीं बताऊंगा, खादमों का नाम नहीं बताऊंगा जो बिदतें फैला रहे हैं। इसलिए सारी गुफ्तगू तकरीबन उसने मेरा 1.5 घंटा जाया किया। मैंने उसे शुरू में बता दिया कि मैं तुझको सच बताऊंगा मेरे भाई, लेकिन तू यकीन नहीं करेगा। और जो वो फजूल बातें मुझे बता रहा था, मैंने कहा कि अगर तू किसी गैर ईमानदार के सामने कर दी या किसी कमजोर ईमानदार के सामने कर दी तो ये सारी बस्ती 1 मिनट में अगले जला देंगे। इसलिए ऐसी बेवकूफी के लिए अपने जुबान पर ताला लगाओ। जी हमारी जिंदगी बदल गई है, मुझे रोया मिली है। मैंने कहा रोया का मतलब क्या है मुझे बताओ। मुझे नबूवत मिली है। मैंने कहा इसका मतलब कि तुम नबी हो गए हो। जी मेरे उस्ताद वो यीशु मसीह उन पर जाहिर होता है, उनसे ही बात करता है और किसी से बात नहीं करता। तो मैंने कहा फिर वो रसूल हुए क्यों जी? रसूल तो वही है जिसने यीशु मसीह को देखा, खाया, पिया, उसके साथ बैठा। पालूस रसूल इसीलिए अपने आप को रसूल कहता है। पालूस रसूल के साथ खुदावंद यीशु मसीह हम कलाम होता रहा, बार बार वो इस बात की गवाही देता है। तो मैंने कहा तो फिर वो आपका उस्ताद रसूल हो गया जी। वो ये कहते हैं, वो कहते हैं। मैंने कहा कि जी सुने, 100 हाथ रस्सा सिरे ते गांड, क्या शैतान आपको शैतान के रूप में आकर बरगलाएगा? क्या शैतान आपको आकर कहेगा कि मैं शैतान हूं मेरे पीछे चलो? जरा सोचें, आएगा? खुदा का कलाम आज से कई हजार साल पहले इस बात की दलील देता है कि बहुत से झूठे बहरूपिये आएंगे जो मसीह के नाम से, किसके नाम से? मसीह के नाम से। कौन सी किताब होगी? किताबे मुकद्दस ही होगी। इसलिए दूसरा करंथियों 11:13 में लिखा है क्योंकि ऐसे झूठे रसूल और दगाबाजी से काम करने वाले हैं, वो अपने आप को मसीह के रसूलों के हम शक्ल बना लेते हैं। किसके? मसीह के हम शकल, मसीह के रसूलों के हम शकल। मैंने उसे कहा मुझसे मुझे इससे कोई परवाह नहीं कि आप दुआ करते हैं, रोजा रखते हैं, ये बहुत दुरुस्त है। खुदा का कलाम हुक्म देता है दुआ करें, रोजा रखें। अगर आप कहें कि जी मुझ पर वही उतरी है, मुझे नबूवत मिली है, मुझे रोया मिली है, तो फिर आप गलत सोच में हैं। और अगर आप कहें कि मुझे मौजजात की कुदरत मिली है, तो मैंने कहा फिर खुदावंद खुदा ने जब जब भी अपने लोगों को ये कुदरत दी है तो उसने गैर कौमों की तरफ भेजा है, फिर आप गैर कौमों की तरफ क्यों नहीं जाते? सो अबलीस आपको अबलीस के रूप में आकर बहकाएगा नहीं। क्या लिखा है? पालूस कहता है ऐसे लोग झूठे रसूल और दगाबाजी से काम करने वाले हैं और अपने आप को मसीह के रसूलों के हम शक्ल बना लेते हैं। अगर 75 बातें दुरुस्त हैं और उसमें एक बात गलत है तो फिर वो दुरुस्त नहीं है। सोने में चाहे वो कितना ही कीमती खूबसूरत क्यों नहीं है, अगर एक रत्ती खोट है तो वो मुकम्मल सोना नहीं है, उसमें खोट है। इसलिए कहता है खुदावंद का बंदा पालूस रसूल के वो मसीह के रसूलों के हम शक्ल बन जाते हैं। उस दौर में बहुत से थे जो यीशु मसीह के शिगिर्दों के हम शक्ल बनकर चाहते थे कि हम भी दुआ करें लोगों को मौजजात की कुदरत मिले। 14वीं आयत में लिखा है और कुछ अजीब नहीं, पालूस रसूल कहता है ये हैरानी की बात नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है। शैतान भी अपने आप को नूरानी नूर के फर्जंदों का हम शक्ल बना लेता है, कि उसका मतलब उसके नाम का मतलब क्या है? धोखेबाज। तो इसलिए अगर कोई आपको आकर कहे कि जी मैं दुआ करूंगा और 60 पहलवान आ जाएंगे आपके मकान को ढाने के लिए, तो वो गलत है। बाइबल मुकद्दस में कहीं पर भी 60 पहलवानों का जिक्र नहीं मिलता। मैं चादर मारूंगा तो पानी रुक जाएगा, मैं चादर मारूंगा तो कोठा डिग जाएगा। बराए मेहरबानी खुदा के कलाम में से दुरुस्त तलीम दुरुस्त वक्त में जिंदगी गुजारने की जरूरत है। उस नौजवान ने कहा कि जी पादरी साहब ने आना उनसे गुफ्तगू करनी। मैंने कहा जी आप कहीं पर भी ले जाएं, दुनिया के कितने बड़ी मर्जी डॉक्टर के पास ले जाएं, जब बाइबल की बात होगी तो मैं झिझकूंगा नहीं। तो इसलिए बाइबल मुकद्दस हमारी रहनुमा किताब है। पालूस रसूल कहता है कि अगर कोई आसमान का फरिश्ता आकर भी खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी को बदलने की कोशिश करे तो वो लानती है। मलाउन का मतलब लानती है। और कुछ अजीब नहीं, शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्तों का हम शक्ल बना फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है। पस अगर उसके खादम भी, किसके? अबलीस के। अबलीस के खादम हैं। वो मुझे बता रहा था ये खबीस जो है ये फलां फलां बंदा है। मैंने कहा भाई जान अपनी जबान पर ताला लगाओ। अके जी बदरुओं ने कहा है कि हम फलां फलां बंदा है, मेरा ये नाम है। मैंने कहा यीशु के बंदे क्या बदरू पर यकीन कर रहा है? बदरू का काम है फसाद डालना। अक्सर हो सकता है कि आप माजी में किसी बाबे के पास गई हो या गए हो कि जी हमारा कारोबार किसने बांधा है? तेरे चाचे दे भनेवे ने, ओदी फुफी दे मुंडे ने जाके फलां जगह तो काम करवाया। ते असी बाबे दा ते बदरू दा यकीन करके की कर दें? इन्हों तो मिलना ही नहीं, इन्होंने तो मैं राबता ही नहीं रखना। हम खुदा के कलाम का यकीन नहीं करते, बदरू का यकीन कर लेते हैं। बदरू का मतलब बदरू, उसमें से कोई भी बदी के अलावा अच्छी बात निकल नहीं सकती। बाइबल मुकद्दस में कहीं नहीं जिक्र मिलता कि यीशु मसीह के सामने बदरूहों ने खड़ा होकर कहा हो जैसे उस बेड़ियों में जकड़े हुए आदमी को जो कब्रों में रहता था उससे यीशु मसीह ने पूछा कि तू कौन है? यीशु मसीह को उसने जवाब दिया मैं लश्कर हूं। उसने ये नहीं कहा कि इसके फूफी के मुंडे ने मुझे भेजा है कि मैं इसमें बसूं। अब वो ठीक हो गया और जाके फूफी के मुंडे से लड़ाई शुरू कर लो। याद रखें बदरू का यकीन ना करें, अबलीस का यकीन ना करें। जैसे हमारी पंजाबी कहावत बनी हुई है कि तत्ते तवे दे उत्ते भी वो बह जावे ते उदा यकीन नहीं करना। अबले इसमें कोई सच है ही नहीं। वो सच का हम शक्ल बनता है। तो कहने लगा जी मुझे बताया है जी, मैं दुआ करता हूं तो मुझे फलां बंदे पर मैंने दुआ की और उसने कहा जी इसमें खबीस है, इसमें खेत्रपाल है। मैंने कहा कि जनाब तुमको इलम भी है कि वो कौन है, इसलिए आप सब तक ये सच पहुंचाना जरूरी है कि हमारे इर्द गिर्द माहौल में क्या हो रहा है। ये बात पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल जाते वक्त जब भी मैं पाकिस्तान से वापस जाता हूं इसी हवाले को पढ़ता हूं। मेरे साथ देखें इमाल की किताब, इमाल उसका 20वां बाप जो इफ़सस की कलीसिया को पालूस रसूल उसके तमाम लीडरों को और तमाम एल्डरों को लिख रहा है और उनसे कहता है। इमाल की किताब उसका 20 बाप उसकी 24वीं आयत से, लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं बामकाबला इसके के अपने दौर और उस वक्त और वो खिदमत जो यसु मसीह में पाई है पूरी करूं, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं। और आगे कहता है और अब देखो मैं जानता हूं कि तुम सब जिनके दरमियान बादशाही की मनादी करता फिरा मेरा मुंह फिर ना देखोगे। पालूस रसूल उनसे जुदा हुआ, उसे नहीं पता था कि वापस वो इफिसस में जाएगा। बस आज के दिन तुम्हें कतई कह देता हूं कि सब आदमियों के खून से पाक हो, क्योंकि मैं खुदा की सारी मर्जी तुम पर पूरे तौर से बयान करने से ना झिझका। यानी कि खुदा की उस तमाम मर्जी को जो खुदा ने चाहा तुम पर बयान करूं उसे किया। इफ़सियों का खत बाइबल मुकद्दस में ऐसा अलहाम है जो पुराना नया अहदनामा खुदावंद यसु मसीह का वो सच है जो पालूस रसूल के वसीला से कलीसिया तक पहुंचा, जो कौमों से, जो फरिश्तों से, आसमान की फौजों से भी पोशीदा भेद था, पालूस रसूल के वसीला से खुदा ने कलीसिया को दिया। और क्या कहता है 28वीं आयत, पस अपनी और उस सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूहुल कुद्दस ने तुम्हें निगाबान ठहराया है, ताकि खुदा की कलीसिया की गल्लाबानी करो जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया है। मैं ये जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जिन्हें गल्ला पर कुछ तरस ना आएगा। यह हवाला हर साल जाने से पहले मैं पढ़ता हूं कि खबरदार रहें, अपनी रूहों के निगाबान यसु मसीह को तकते रहें, किसी फसाद में मत फंस जाना। और कहता है 30वीं आयत, और खुद तुम में से ऐसे आदमी उठेंगे जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे ताकि शिगिर्दों को अपनी तरफ खींच लें। उल्टी उल्टी बातें, और उस 2.5 घंटों में जो उस नौजवान से बात हुई उसने काम की एक भी बात नहीं की। हवाला जात जो बाइबल मुकद्दस के हैं उनको उल्टी तफसीर पकड़ी हुई है। 666 का दौर आ गया। मैंने कहा जनाब फिर यसु मसीह का वादा कहां पर गया कि कलीसिया कहूंगा वापस लेने के लिए जिनके लिए मैंने जगह तैयार की है। तो आप कह रहे हैं कि यसु मसीह आ चुका है, फिर हम कौन हैं, फिर हम यहां पर क्यों हैं, कलीसिया क्यों जमीन पर है। तो ये वो बेत है जो बाइबल मुकद्दस में है, सादा सच्चाइयां हैं जिसे बहुत दफा हम अनदेखा कर देते हैं। और पालूस रसूल कहता है इसलिए जागते रहो और याद रखो कि मैं 3 बरस तक रात दिन आंसू बहात बहा कर और हर एक को समझाने से बाज ना आया। इसलिए पासबान की, एक निगाबान की, एक खादम की रूह में कलीसिया उस बोझ की मानद है कि दिन रात उसे उसकी फिक्र है। और 32वीं आयत, अब मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम के सपुर्द करता हूं जो तुम्हारी तरक्की कर सकता है और तमाम मकसों में शरीक करके मिरास दे सकता है। और पालूस रसूल आगे अपना हाल बयान करता है और वो सारे रोए क्योंकि वो जानते थे कि दोबारा उसे ना देखेंगे। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमारा आना जाना लगा हुआ, लेकिन एक वक्त आने वाला है जिसमें आपको मजबूत होने की जरूरत है, खादमों को मजबूत होने की जरूरत है। हो सकता है कि दोबारा आप भी मेरा मुंह ना देखें, क्योंकि ऐसे हालात आ रहे हैं। बहुत जल्द कल की जो खबर है, अमेरिका की 14 रियासतों ने अपनी दूसरी 26 रियासतों के खिलाफ वो बातचीत चल रही है कि वो उनको कह रहे हैं कि जंग हो। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि मसीही अकीदे को ख़त्म किया जाए और हर एक जैसे चाहे जो कुछ कर सकता है। 14 रियासतें जो खड़ी हो रही हैं कि मसीहत का सच बयान किया जाए और मसीही ज़िंदगी और मसीही असूल के मुताबिक जो मुल्क पाया गया था, तमीर किया गया था, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। तो जल्द, हमें नहीं पता, हो सकता है यीशु मसीह जल्द आने वाला है। वक्त को, दिन को, महीने को, साल को कोई नहीं जानता, लेकिन तमाम निशानात के मुताबिक आने वाले में चौथे महीने की तकरीबन 12 या 16 तारीख को जो सूरज है वो खून नमा होगा, जो कि पिछले कई हजारों साल से यहूदी यहूदी कैलेंडर के मुताबिक और वक्त के मुताबिक हजारों हजारों साल पहले हुआ था। और ये चार दफा इस साल में गालबन कहा गया है कि होगा, और ये वो तमाम निशानात हैं। इसलिए ये वो सच हैं जो बिबलकल यानी के बाइबल की रूह से हैं, साठ पलवान बाइबल की रूह से नहीं। मिकल फरिश्ता मेरी दुआ पर नहीं आता, मिकल फरिश्ता खुदा का ऐसा जंगजू फरिश्ता है कि उसकी कुव्वत और ताकत बयान से बाहर है। हम सबको खुदा का पाक रूह अनायत किया गया है, खुदा का पाक रूह हमारी हिफाजत करता है, और हम कहते हैं कि नहीं नहीं खुदा पाक रूह तेरी नहीं, हमें मीकाएल की जरूरत है। मीकाएल फारग नहीं बैठा खुदा के तख्त पर कि वो बदरूहों से लड़ने के लिए आए। खुदावन यीशु मसीह का रूह पेंतिकोस के दिन जमीन पर नाजल हुआ, और तब से अब तक जब तक कलीसिया नहीं उठाई जाती आसमान पर नहीं जाएगा। वो अब ईमानदारों के अंदर रहता है। इसलिए जागें और बेदार हों, दुआ करें जितनी ज्यादा कर सकते हैं। आज कलीसिया में दुआ की कमी है। हम बीमारी के लिए दुआ करते हैं, कर्जा लेने के लिए दुआ नहीं करते। हम लड़ाई के लिए बहुत बड़ी लंबी बातें बनाते हैं, कभी दुआ के लिए अपने घुटनों पर नहीं हुए। इसलिए दुआ की ज़रूरत है, रोज़े की ज़रूरत है। ये नहीं कि मुझे पहलवान खुदा बना दे, नहीं, बल्कि खुदा उन हिकमत और दनाई दे ताकि रास्तबाजी से और पूरी पाकीजगी से तेरे साथ ज़िंदगी बसर करूं। इसलिए बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की तरह। खुदा यीशु मसीह ने कहा, कोई तुमको धोखा ना दे, कोई तुमको गुमराह ना करे, कोई तुमको बेफायदा बातों से बरगश्तगी में ना लाए, स्वयं खुदा के हुजूर झुकें।